ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की मुरली हम सब ने आज मॉर्निंग में सुनी। बाबा ने शंकराचार्य को याद किया। बाबा ने कहा शंकराचार्य ने भारत को थमाने में बहुत योगदान दिया। प्यारे बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन द्वापर युग में निवृत्ति मार्ग वालों ने भी अपना योगदान दिया है। तो बाबा ने तो महिमा की, लेकिन जब बाबा ने महिमा की उस समय मुझे एक छोटी सी बात याद आई। बात सच्ची नहीं है, लेकिन बात बड़े महत्व की है। कहते हैं एक बार पक्षियों ने एक मीटिंग की, जंगल के पक्षियों ने, कबूतर, तोता, कौवा सब ने मिल करके। तो मीटिंग का विषय था कि सबसे श्रेष्ठ कौन। तो एक पक्षी ने कहा कि देखो ना, जंगल में ये एक सन्यासी है, तपस्या कर रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो दूसरे पक्षी ने पूछा कि इसमें क्या श्रेष्ठता है। उसने कहा कि ये बेचारा कंदमूल फल खाता है। तो एक पक्षी ने कहा वो तो हम भी खाते हैं, हम भी तो पेड़ों के फल ही खा करके जिंदा रहते हैं, हम कौन सा पका हुआ भोजन खाते हैं। फिर उसने कहा देखो ना, इस बेचारे ने कपड़े नहीं पहने हुए, एक बेचारे के शरीर पे कपड़ा है। तो पक्षियों ने कहा हमारे शरीर पर तो एक भी नहीं है, तो ये कौन सी बड़ी महानता है। फिर उसने कहा कि देखो ये घास फूस की झोपड़ी में रहता है। तो पक्षियों ने कहा हमारा जो घोंसला है वो भी तो घास फूस का ही है, वो कौन सा सीमेंट का और ईंट का बना हुआ है। तो पक्षियों की मीटिंग में सर्वसम्मति से पास हुआ कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि केवल कंदमूल फल खाने से, झोपड़ी में रहने से, जमीन पे सोने से अगर व्यक्ति महान बन जाए तो जंगल में रहने वाले जानवर तो सारे ही ऐसे ही हैं। तो वास्तव में महानता का आधार क्या है? महानता का आधार ये है कि हम लोगों के बीच में रहें, समाज के बीच में रहें, अपने कर्तव्यों को करते हुए भी बेहद की वैराग वृत्ति में रहें। और ऐसी शिक्षा हमको बाबा ने ही दी है। 650 करोड़ लोगों की इस दुनिया में हम बाबा के बच्चे न्यारे भी रहते हैं, प्यारे भी रहते हैं। इसका आधार है राग वृत्ति नहीं, लेकिन वैराग वृत्ति। दो बातें होती हैं, राग और वैराग। तो बाबा ने हम बच्चों को वैराग सिखाया है, और वो भी बेहद का, हद का नहीं। अब बेहद के वैराग का अर्थ है देह सहित, देह के सब संबंध और देह के सब पदार्थ, इनसे अपना बुद्धि योग निकाल करके केवल एक शिव बाबा में, बिंदु रूप बाबा में अपना मन लगाओ। और इस बेहद की वैराग वृत्ति का परिणाम है, भगवान ने कहा है कि मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब आज की जो दुनिया है वो वैराग की दुनिया नहीं है, वो तो राग की दुनिया है। दुनिया में आज का जो ट्रेंड है, कहते हैं भाई विकास करो, विकास करो, विकास होना चाहिए। हम भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं आध्यात्मिक बनो, वैरागी बनो, तो लोग कहते हैं बहन जी विकास कैसे होगा, विकास होना चाहिए। तो आज की दुनिया की विकास की परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये है कि अधिक से अधिक चीजें उत्पादित करो, फिर उत्पादन की हुई चीजों का विज्ञापन करो, विज्ञापन करके लोगों में उनकी जरूरतें पैदा करो, जिन चीजों की जरूरतें नहीं है उनकी भी जरूरतें पैदा कर दो, इस तरह से चीजों का विज्ञापन करो। अब विज्ञापन हो गया, चीज को लोगों ने देख लिया, अब लोग उस चीज को लेने के लिए मचलेंगे। अगर उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो भी किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ खरीदेंगे, सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से खरीदेंगे, चोर बाजारी करेंगे, रिश्वत लेंगे, मिलावट करेंगे, झूठ बोलेंगे, अधिक मुनाफा लेंगे, किसी ना किसी तरीके से। अब उन्होंने एक चीज़ खरीद के पूरी की नहीं होती है, इतनी देर में दूसरी चीज़ का विज्ञापन आ जाता है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत बन जाती है, अब फिर उस दूसरी चीज़ को खरीदने के लिए फिर और पैसा चाहिए, फिर और पाप करो, और धन कमाओ, और किसी की जेब काटो, तो ये दुष्चक्र चलता रहता है। अब चीज़ें उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, उनके लिए यंत्र चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ। अब बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ, यंत्र लगाओ, उद्योग लगाओ, उनके लिए खेती की ज़मीन को नष्ट करो, खेती की ज़मीन को नष्ट करो, जंगलों को काटो, पर्यावरण को प्रदूषित करो, अधिक पानी लगाओ, धुआं बहाओ, गंदगी बहाओ, नदियों को गंदी करो। तो लोग मंत्रों को भूल गए और यंत्रों के कारण एक मिनट मिनट में कितनी चीज़ें उत्पादित होती हैं, चाहे किसी को चाहिए नहीं चाहिए, घरों को लोगों ने चीज़ों से भर दिया। अब या तो चीज़ों को देखो या भगवान को देखो, आँख कहीं ना कहीं अटक जाती है व्यक्ति की, घर में बाजार में, वो ऊपर जाना चाहता है फिर नीचे आ जाता है। तो इसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, इसको कहते हैं इच्छा प्रधान संस्कृति, इसको कहते हैं विकास की आधुनिक परिभाषा, लोग इसी को विकास मानते हैं। और कहते हैं अगर हम आध्यात्मिक बन गए, वैरागी बन गए, तो फिर ये विकास रुक जाएगा। लेकिन देखा जाए तो बहुत चीज़ों का उपभोग करना ये विकास नहीं है, और इसके लिए लोगों की जेब काटना ये विकास नहीं है, ये तो वास्तव में पतन है। विकास वास्तव में आध्यात्मिक होता है, नैतिक होता है, मूल्य परक होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं, दया नहीं, चीज़ों का अंबार लगा है, तो उसको हम कैसे विकसित कह सकते हैं। इसलिए विकास का सही अर्थ है कि व्यक्ति के गुणों का विकास हो, चरित्र का विकास हो, सहनशीलता का विकास हो, भाईचारे का विकास हो, यूनिटी का विकास हो, और इन सब के लिए चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान में भी पहला पाठ बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया, आत्मा का पाठ। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहता है सारे पापों की जड़ है देह अभिमान, और देह अभिमान को जीतने के लिए चाहिए आत्म अभिमान, आत्मचिंतन। सारे गुणों का आधार है आत्मचिंतन। अब आत्मचिंतन तब हो जब लोगों को आत्मा का ज्ञान हो। ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान के ऊपर अमल करके चलना ये दूसरी बात है। इसलिए हम बच्चों को बाबा ये पाठ रोज पक्का कराता है, क्योंकि ज्ञान तो हमको हो गया पर अभी पाठ अमल में नहीं आया है। अमल में आने का मतलब है कि हमारी नेचुरल आत्मदृष्टि बन जाए, जिसके लिए बाबा मुरली में कहते हैं कि जो माला में आने वाले बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि उनकी आत्मदृष्टि बड़ी नेचुरल होगी। एक होता है मेहनत करके आत्मदृष्टि बनाई, और एक होता है नेचुरल है ही आत्मदृष्टि। जैसे देह दृष्टि नेचुरल है, ऐसे ही आत्मदृष्टि नेचुरल है, सीधी नज़र मस्तक पे ही जाती है। अपने बारे में भी यही चिंतन चलता है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा पहले देवयुग में थी, देवयुग में से चक्कर लगाते लगाते अभी संतिम शरीर में हूँ, और अब मुझे फरिश्ता बन करके फिर देवयुग में जाना है वाया परम धाम। ये नेचुरल चक्र बुद्धि में चलता रहता है। दूसरे को देखते हैं तो भी यही स्मृति आती है कि ये सब देवयुग वाली आत्माएं हैं, गुप्त रूप में देवता हैं, अवतरित आत्माएं हैं और ईश्वरीय कर्तव्य के लिए अवतरित हुई हैं और ये आत्माएं ईश्वरीय कर्तव्य को पूर्ण करके पुनः अपने देव स्वरूप को धारण करने वाली हैं। एक बार यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें एक कोई मिनिस्टर आया था, तो उसने कहा उस समय भारत की जनसंख्या 100 करोड़ थी, अभी तो 120 करोड़ हो गई है। तो उसने कहा था, बड़ी भावना से कहा था उसने, कि हमने सुना है कि भारत में 33 करोड़ देवता हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो 33 करोड़ देवता कहाँ छिपे हुए हैं। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है और लोग इतने दुखी हैं, अगर एक देवता 3 लोगों की जिम्मेवारी ले ले तो ये 100 के 100 करोड़ लोग सुखी हो सकते हैं। तो उस समय उसकी बात में हमको बड़ा दम लगा, बात तो ये सच्ची कह रहा है क्योंकि 33 करोड़ देवता हैं तो यही, और ये जो कह रहा है वो सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी वो गुप्त रूप में हैं, प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब तो सबको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन काम तो देवता गुप्त रूप में ही करते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों का अभी गुप्त वास चल रहा है, जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि 12 साल का वनवास था और 1 साल का गुप्त वास था, फिर वो पूरा हो गया, उसके बाद उनको राजधानी मिल गई। तो आत्मदृष्टि में हमें अपना भी संपूर्ण स्वरूप नजर आता है और दूसरे को भी हम संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब आत्मदृष्टि हमारी बनी रहे इसके लिए आत्मचिंतन नए नए तरीके से हमको करना है। आप छोटी छोटी बातों को भी देखेंगे ना, उनको देख करके भी आपको आत्मा के ज्ञान की स्मृति आएगी, चिंतन चलेगा। अब जैसे अपन इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस हॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुर्सी हैं, टेबल है, बहुत कुछ है। ये मनुष्य का शरीर है, ये भी एक कमरे की तरह ही है। बाबा कहता है, बच्चे ये आत्मा का मकान है, ये अब टूट फूट गया है, अब तुमको नया मकान मिलेगा। बाबा ये भी कहते अपने सतयुग वाले मकान को याद करो, शरीर रूपी मकान कितना सुंदर होगा। तो ये जिस कमरे में, जिस हॉल में अपन बैठे हैं वो भी मकान है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अचानक कोई कहता है कि भाई यहाँ कोई ट्रेजडी हो गई है, बाहर निकलो, तो इस हॉल में से कौन निकलेगा? ना कुर्सियाँ निकलेंगी, ना टेबल निकलेगा, केवल हम बच्चे, बाबा के बच्चे बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम चेतन हैं और बाकी जो भी कुछ है इसमें जड़ है। ऐसे ही इस शरीर में केवल एक आत्मा ही चेतन है, बाकी जितनी भी इसके अंग प्रत्यंग है सबके सब जड़ हैं। अंग प्रत्यंग तो बहुत सारे हैं, एक तरफ गुर्दा है, हार्ट है, फिर इसमें एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है तो शरीर में से कौन निकल के भागता है? कभी आपने देखा, नाक भाग गया, आँख भाग गई, दांत निकल के भाग गए, क्यों नहीं भागते? क्योंकि वो जड़ है, जड़ शरीर का एक हिस्सा है, कैसे भागेंगे? निकल के कौन भागता है? आत्मा भागती है, वो चेतन है, उसी ने प्रवेश किया था, वही निकल करके भाग गई। दुनिया में जितनी भी जड़ चीजें हैं उनका प्रयोग कोई ना कोई चेतन करता है। जड़ चीज अपने आप के लिए नहीं होती, प्रकृति जड़ है, अपने आप के लिए नहीं है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला चेतन मनुष्य है। तो ये शरीर तो जड़ प्रकृति का बना हुआ है, तो मैं कौन हूँ? मैं इसका उपभोग करने वाला, इसको यूज करने वाला, इसका मालिक हूँ। चेतन आत्मा, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, प्रकृति पति हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग में आप प्रकृति पति थे तो प्रकृति आपके आदेश मानती थी, आप उसको जैसा आदेश देते थे आपकी सेवक बन के रहती थी, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें आपको देती थी, मालिक की बात तो सब मानेंगे, तो आप मालिक थे। धीरे धीरे क्या हुआ, आप अपनी प्रकृति पति की सीट से थोड़े नीचे उतरने शुरू हुए और द्वापर युग आते आते सीट से बिल्कुल खिसक गए। द्वापर युग में देह अभिमान आया, अपने आप को शरीर मानने लगे, तो प्रकृति ने देखा कि अब मालिक सीट पे तो बैठा नहीं है, तो जो मालिक सीट पे नहीं बैठता उसका आदेश कोई नहीं मानता, तो प्रकृति ने मनमानी करनी शुरू कर दी। और कलयुग आते आते तो देखो प्रकृति मनमानी कर रही है, क्योंकि इसको कोई आदेश देने वाला, संभालने वाला है ही नहीं। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि फिर से अपनी सीट पर बैठो, सीट पर बैठ करके आदेश दोगे तो प्रकृति आपका आदेश मानेगी। बाबा ने मुरली में कहा था कि जो बच्चे अपने स्वरूप में टिके रहते हैं उन बच्चों का प्रकृति कभी कुछ नहीं बिगाड़ती। उन बच्चों की प्रकृति कितनी भी भयंकर रूप हो लेकिन मदद करेगी, सहयोग देगी। और हमने बहुत जगह ऐसे उदाहरण देखे कि चारों तरफ तबाही है लेकिन बाबा के बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि अगर हम अपनी सीट पे सेट हैं तो जो मालिक सीट पर बैठा है उसके आदेश की पालना अवश्य होती है। तो बाबा रोज की मुरली में ये पाठ पक्का कराते हैं कि मालिक बन करके रहो, मालिक की सीट पर रहो। जज भी देखो सीट पे बैठ के फैसला करेगा तो कितना भी भयंकर फैसला हो, भले फांसी की सजा दे दे मान लेंगे, और अपनी कुर्सी से उतर करके छोटी भी बात कहेगा तो भी कोई नहीं मानेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमारा ये नेचुरल अभ्यास हो कि मैं इस शरीर रूपी प्रकृति का मालिक हूँ। संस्कृत में कहते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म की साधना के लिए है। आत्मा को ये इसलिए मिला कि इसमें बैठ करके वो धर्म के काम करेगी, पुण्य के काम करेगी, अच्छे काम करेगी, इसके द्वारा कमाई करेगी, आध्यात्मिक अलौकिक कमाई करेगी। तो ये हमारे लिए एक साधन है। इस शरीर में बिलियन ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स को मिलाकर के ये शरीर बना है। जैसे हम कहते हैं ब्रिक बाय ब्रिक मकान बनता है, इसी तरह से सेल बाय सेल ये बॉडी बना हुआ है। सेल को मिलाकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज को मिलाकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स को मिलाकर के हमारे शरीर के सिस्टम बनते हैं। 7 सिस्टम है शरीर में और उन सबको मिलाकर के ये शरीर बनता है। तो इसकी छोटी से छोटी इकाई है सेल, कोशिका कहते हैं जिसको हिंदी में। अब जब हम कहते हैं मैं तो कौन सी सेल ने कहा मैं? क्या किसी सेल में मैं कहने की ताकत है? तो अगर कोशिका में ही मैं कहने की ताकत नहीं है तो इस शरीर के किसी भी अंग में मैं कहने की ताकत नहीं है, तो ये मैं कहने वाला कौन है? जरूर इन सेल्स से भिन्न कोई और सत्ता है। जैसे अपन बैटरी देखते हैं, उसको अपन खिलौने में डाल देते हैं, अभी तक खिलौना चल नहीं रहा था लेकिन जैसे ही उस छोटी सी बैटरी को डाला, सेल को डाला, खिलौने ने मूव करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से ये शरीर अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, मशीन है, बहुत सुंदर एक साधन है, लेकिन जैसे ही इसमें बैटरी डलती है आत्मा, ये बोलना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो निकल जाती हैं ये बेचारा जड़ बन जाता है, हलचल खत्म हो जाती है। तो मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म लेकिन मुझ में इतनी ताकत है, इसलिए कहते हैं आत्मा एक लाइट है और लाइट होने के साथ साथ माइट भी है, एक शक्ति है। इतनी सूक्ष्म आत्मा में इतनी शक्तियां भरी हुई हैं। सबसे बड़ी शक्ति तो ये है कि 84 जन्मों का उसमें पार्ट भरा हुआ है, उसका कोई आकार नहीं। अगर आप मापना शुरू करें तो आत्मा की कोई लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, मोटाई नहीं, दिखती नहीं, पकड़ में नहीं आती है और शरीर में कोई जगह भी नहीं घेरती है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक शरीर में 2, 3, 4 आत्माएं भी रह सकती हैं, तो इतनी आत्माएं कहाँ प्रवेश हो गई? जगह बहुत चाहिए नहीं तभी तो प्रवेश हो गई, जगह चाहिए तो। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था अगर आत्मा को जगह चाहिए तो यहाँ बहुत ऊंचा हो जाए माथा, ऐसे बाबा ने बोला था, लेकिन पता ही नहीं पड़ता 2 आत्माएं 3 आत्माएं 4 आत्माएं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है माप के हिसाब से। लेकिन इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सीरियल वाइज भरा हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे भी नहीं होता है, फाइलें खराब भी नहीं होती हैं। आजकल कंप्यूटर में भी अपन डाटा सेव करते हैं सीडी में, लेकिन कहते हैं फाइल खराब हो गई, खुल नहीं रहा है, लेकिन ये अपने टाइम पे खुलती है और सीरियल वाइज खुलती है। ऐसे भी नहीं कि पांचवां जन्म पहले खुल गया, चौथा जन्म बाद में खुला, ऐसा भी नहीं है, सीरियल वाइज खुलती जाएगी। जैसे ही सतयुग में जाएंगे, पहले जन्म का रोल खुलेगा, दूसरे जन्म का रोल खुलेगा, तीसरे का खुलेगा, सीरियल वाइज खुलता जाएगा। और फिर इसमें खुद में तो वजन नहीं है, लेकिन इतने वजनी शरीर को 70 किलो का 80 किलो का उसको कैसे मूव करती है, एक संकल्प के साथ दौड़ाती है, चलाती है, जीवन भर चलाती है। जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को उठाने में कितना लोग लगते हैं, और वो भी बेचारे थक जाते हैं, कंधा बदलते रहते हैं, लेकिन ये छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को उठाती है, चलाती है, और केवल खुद को ही नहीं औरों का भी वजन उठा लेती है। तो ये लाइट भी है और माइट भी है, अदृश्य है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको रियलाइज किया जा सकता है। ये रियलाइज शब्द बहुत सुंदर है, इसमें दो शब्द हैं, एक है रियल और दूसरा है आइज। रियल आइज, रियल माना वास्तविक, आइज माना आंखें। वास्तविक आंखें कौन सी हैं, जो रियलाइज करती हैं। तो फिर ये आंखें कौन सी हैं जो हमारे पास हैं, ये रियलाइज नहीं करती, ये केवल देखती हैं। देखना बड़ी बात नहीं है, रियलाइज करना बड़ी बात है। देखने में तो बहुत बार धोखा हो जाता है, अपन ने कोई चीज देखी दूर से, कहते हैं तो बड़ी सुंदर है, फिर क्या करते हैं, उसको हाथ लगाते हैं या और कई तरीके से उसकी असलियत को जानने की कोशिश करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, देखने में ही सुंदर थी। इसका मतलब क्या हुआ, केवल देखने भर से अगर अपन सौदा कर लेते तो धोखा खा जाते, लेकिन उसको रियलाइज किया असलियत को तो धोखे से बच गए। तो ये आंखें केवल देखती हैं, लेकिन हमको क्या करना है, रियलाइज करना है। आंखों की शक्ति तो बहुत कम है, केवल सामने का देखती हैं, पीछे का नहीं देखती, दाएं बाएं भी नहीं देखती, अंधेरे में भी नहीं देखती, दूर का भी नहीं देखती। लेकिन रियलाइजेशन के लिए क्या कहा जाता है कि आदमी कितनी भी दूर बैठा अनुभव कर सकता है, परम धाम का अनुभव हम यहाँ बैठे कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन का अनुभव, देखते नहीं है लेकिन अनुभव करते हैं। और देखने में जैसे कार के आगे हेडलाइट होती है, केवल सामने का देखती है, तो ये भी हेडलाइट है, केवल सामने का देखती है, अंधेरे में दूर में कहीं भी नहीं देखती है। तो वास्तविक जो आँखें हैं वो रियलाइजेशन की होती हैं। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा को रियलाइज किया जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं एकांत में बैठो, एकांत में बैठ करके अपने ध्यान को भ्रुकुटी में केंद्रित करो और वहाँ प्रकाश रूप आत्मा को भीतर के नेत्र से देखो। देखने के साथ फिर रियलाइज करो कि मेरी संपूर्ण चेतना यहाँ है, चेतना का केंद्र ये है, और संपूर्ण चेतना को यहाँ समेटो। जैसे अपन सुनते हैं कि भाई एक हमारे बाबा का भी है, बाबा ने एक ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के करवाया, और एक रामकृष्ण परमहंस के फॉलोवर थे, स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, उन्होंने भी एक ऑपरेशन करवाया, तो डॉक्टरों को कहा था कि मुझे एनेस्थीसिया मत देना। तो उसमें वो क्या करते हैं कि आत्मा की जो चेतना है वो संपूर्ण शरीर में बिखरी रहती है, पाँव के अंगूठे तक भी चेतना है, लेकिन जब आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सारे अंगों में से चेतना को खींच करके यहाँ केंद्रित कर लेते हैं, संपूर्ण चेतना यहाँ केंद्रित हो जाती है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ। वो चेतना इतनी केंद्रित हो जाती है कि बाकी शरीर का एहसास नहीं रहता, और उसमें वो लोग ऑपरेशन कराते हैं, ये सच बात है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, देह अभिमान को अगर खत्म करना है तो अपनी चेतना को यहां केंद्रित करो। मैं आत्मा हूं, प्रकाश पुंज, मैं आत्मा भ्रकुटी में स्थित हूं और यहीं से जैसे मेरी किरणें चारों तरफ निकल रही हैं, प्रकृति को प्रकाशित कर रही हैं, सामने आने वाली आत्माओं को भी प्रकाशित कर रही हैं। और जब हम भ्रकुटी पे सिंहासन पे विराजमान रहते हैं तो परमात्मा पिता के साथ हमारा लिंक नेचुरल जुड़ता है, प्रयास के बिना जुड़ता है, क्योंकि जैसे ही आत्मस्थिति हुई एकदम हमारी स्मृति, हमारी चेतना परमात्मा की तरफ जाती है, उसका कनेक्शन परमात्मा से, देह का कनेक्शन देह की दुनिया से है। तो इसलिए जैसे ही देह विमान में आते हैं चेतना देह की दुनिया में बिखर जाती है, और जैसे ही आत्मस्थिति में टिकते हैं चेतना परमात्मा की तरफ जाती है। तो ये हमारा पहला पाठ है, पहले पाठ के साथ साथ ये हमारा आखिरी पाठ भी है। हमारा जो पेपर होगा उसमें भी यही सवाल आएगा कि एक सेकंड में अशरीरी बनो, एक सेकंड में नष्टो मोहा बनो, एक सेकंड में डिटैच हो जाओ। और डिसीजन पावर भी हमारी आत्मस्थिति में अच्छी होती है, एक सेकंड में अपने को डिसीजन लेना है। अगर अपन आत्म चेतना में होंगे तो डिसीजन ठीक आएगा, देह चेतना में होंगे डिसीजन में देरी भी लगेगी और गलत भी होगा। तो डिसीजन लेने का पेपर आएगा, तो बाबा हम बच्चों को उस आखिरी पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए रोज की मुरली में एक बार नहीं, कई कई बार बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो भट्टी माना क्या, यूं तो अपन हमेशा अभ्यास करते हैं लेकिन भट्टी में अपने को खास बैठ करके अभ्यास करने का टाइम मिलता है। तो इस भट्टी में हमारी ये आत्म चेतना दृढ़ हो जाए, यही हम सबका लक्ष्य है। आपने यही लक्ष्य लिया होगा और अवश्य आपको इसमें सफलता भी मिली होगी, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।